अगले दिन शिवी उठी तो उसके फ़ोन में नंदिनी का मैसेज आया हुआ था। नंदिनी ने उसे उस जगह की लोकेशन भेजी थी जहां उसे आर्य से मिलना था। उसने मिलने की टाइमिंग शाम के 5 बजे के करीब रखी थी। अच्छा हुआ शाम की टाइमिंग है, उन्होंने मेरा दिन बचा लिया, वरना पूरे दिन मूड खराब रहता, शिवी ने मैसेज देखने के बाद कहा। उसने इस बारे में नील और नितारा को कुछ नहीं बताया था। मैसेज मिलने के बाद वो बेखबर होकर वापस सो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ आर्य ओबरॉय मेंशन में वापस लौट आया था। वो अपने कमरे में था और सामान अनपैक कर रहा था। आशुतोष ने भी उसे मैसेज करके शिवी से मिलने की टाइमिंग बताई। अच्छा, तो शाम तक इंतज़ार करना पड़ेगा उसे मना करने के लिए। लोकेशन के साथ उसका मोबाइल नंबर भी भेज देते तो मिलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आर्य ने मैसेज देखने के बाद कहा और अपना फ़ोन वापस बेड पर पटक दिया। वो अलमारी में अपने कपड़े रख रहा था तभी शौर्य और मायरा ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। आर्य ने उनकी तरफ नज़र उठाकर देखा और फिर वहीं से जवाब में कहा, तुम दोनों जानते हो ना मुझे अपने कमरे किसी का आना पसंद नहीं है। अब क्या बात करने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, मायरा ने चिढ़कर कहा। अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ेगी, पर तुम दोनों को मुझसे क्या काम है? तुम दोनों जो चाहते थे वो हो गया, फिर यहाँ किस लिए आए हो? उनसे बात करने के लिए आर्य वहीं दरवाजे पर आ गया। हमें आपसे बंधन के बारे में बात करनी है, शौर्य ने सीधे सीधे कहा। उसके मुंह से बंधन का नाम सुनकर आर्य की हैरानी से आंखें बड़ी हो गईं। उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई नहीं था। अंदर आ जाओ, आर्य ने उन दोनों को अंदर आने की इजाज़त दे दी। उन दोनों के अंदर आते ही आर्य ने सख्त लहजे में कहा, तुम दोनों ने अभी अभी बंधन कहा, जानते हो ना वो कौन है? मेरी मॉम का नाम लेने से पहले अपनी उम्र देख लो। मुझे लगा था आप झूठ नहीं बोलते हो, मायरा ने उसकी तरफ तिरछी नज़रों से देखा। हाँ, और हम बंधन माँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारी बहन की बात कर रहे हैं, बंधन ओबरॉय, जिसे आपने सबसे छुपा कर रखा है, शौर्य ने बिना डरे सीधे सीधे बोल दिया। उनकी बातें सुनकर आर्य को हैरानी हुई, बंधन के बारे में उस घर के बड़ों के अलावा किसी को पता नहीं था। तुम दोनों उसे कैसे जानते हो? इस बारे में तुम दोनों को किसने बताया? आर्य ने उन दोनों की तरफ घूर कर देखा। दादू ने बताया, अब आप जाकर उन पर गुस्सा मत कर देना। अगर वो ओबरॉय है तो उसे इस घर में रहना चाहिए, हम सब भी तो रह रहे हैं, आप उसे हम सबसे अलग क्यों रखते हैं? मायरा ने पूछा। दिस इज़ नॉट योर बिजनेस, आगे से मुझसे और मेरे मामलों से दूर रहना, और गलती से भी अपने मुंह पर बंधन का नाम मत लाना, डैड के सामने तो स्पेशली नहीं। अब जाओ यहाँ से। आर्य ने उन दोनों को बंधन के बारे में कुछ नहीं बताया। जब तक आप हमें बंधन के बारे में नहीं बता देते तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे, शौर्य ने जिद की। वो मायरा का हाथ पकड़कर बेड पर बैठने को हुआ तभी आर्य गुस्से में जोर से चिल्लाकर बोला, आई सेड गेट आउट, तुम दोनों एंटरटेनमेंट के लिए किसी और को पकड़ो, गलती से भी मेरी बहन को इन सब में इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करना। हम भी तो आपके भाई बहन हैं, मायरा ने कहा। ओ रियली? उसकी बात सुनकर आर्य हंसा। ऐसे भाई बहन जो मौका देखते हैं मुझे नीचा दिखाने का। मायरा, कभी अपनी मॉम से मिलो तो उनसे ज़रूर पूछना, बचपन में वो मुझे कभी तुम्हारे पास भी आने देती थी या नहीं। और शौर्य, तुम्हारा तो कहना ही क्या, गलती तुम्हारी होती थी पर ब्लेम हमेशा मुझ पर आता था। हमारे बीच जो भी रिश्ता है मैं उसे नहीं मानता, बेहतर होगा कि हम तीनों एक दूसरे से दूर रहें, और ख़ासकर बंधन से। आर्य की बात सुनकर शौर्य और मायरा वहां से चले गए। उसके बर्ताव पर उन दोनों को बहुत दुख हो रहा था। ये पहले भी हमारे साथ रूठ रहे हैं पर आज कुछ ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। क्या सच में तुम अपनी गलतियों का सारा ब्लेम इन पर डाल देते थे? मायरा ने शौर्य से पूछा। मैं बच्चा था, मुझे समझ नहीं थी, गलती से मैंने डैड की फाइल फाड़ दी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और डर के मारे मैंने सारा इल्ज़ाम ब्रो पर डाल दिया। उन्हें डांट पड़ी तो मज़ा आने लगा और मैं बार बार यही हरकत करने लगा, मुझे नहीं पता था ये मुझसे नफरत करने लगेंगे, शौर्य कंधे उचकाकर बोला। हाँ सही कहा, हमने कब गलतियां नहीं की हैं। याद है कैरिन का गाउन भी हमने खराब किया था, डैड को सब पता चलने के बावजूद भी उन्होंने भाई को ही डांटा था। मायरा को भी अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। दोनों आर्य की टेंशन पाने के चक्कर में गलतियां करते रहे और उसका परिणाम ये निकला कि वो अब उनसे दूर ही रहता था। ठीक है, मैंने सोच लिया है, अब हम इन्हें सपोर्ट करेंगे एक अच्छे भाई बहन की तरह, शौर्य बोला और उसने अपना हाथ मायरा की तरफ बढ़ाया। मायरा ने भी उसकी बात पर हामी भरते हुए उससे हाथ मिलाया। कैरिन के घर पर आ जाने की वजह से आशुतोष का बर्ताव काफ़ी बदल गया था और उसका ये रिजल्ट निकला कि शौर्य और मायरा आर्य को पसंद करने लगे थे। शाम के 5 बजने वाले थे। आर्य लंदन के स्टारबक्स में बैठकर शिवी के आने का इंतजार कर रहा था तो वहीं शिवी भी वहीं स्टारबक्स के बाहर खड़ी थी। वो बिल्कुल उसी तरह तैयार हुई थी जैसे ऑफिस जाते टाइम होती थी। उसने अपने चेहरे पर डार्क मेकअप किया था और बालों में हेयर विग लगा रखी थी। मैं भी देखती हूँ मुझे इस तरह देखने के बाद वो मुझे कैसी हाँ कहता है, शिवी ने मुस्कुराकर खुद से कहा और अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाए। उनकी टेबल पहले से बुक की हुई थी। उसने वहां आर्य को देखा तो तुरंत अपने मुंह पर मास्क लगा लिया। अरे यार, अब ये यहाँ क्या कर रहा है? इसने मुझे आज डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए कहा था, अब यहाँ देख लेगा तो फिर से गुस्सा करेगा। शिवी वहां से उल्टे कदम जाने को हुई तभी एक लड़की उसके पास आई। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मिस शिवनंदिनी अय्यर है ना? आपके लिए पहले से ही टेबल बुक है, चलिए मैं आपको वहां तक ले चलती हूँ। वो लड़की नंदिनी के लिए काम करती थी। शिवी के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने मास्क नहीं हटाया और वो उस लड़की के साथ चल दी। हैरानी तो उसे तब हुई जब उस लड़की ने उसे आर्य की टेबल तक पहुंचाया, तो वहीं आर्य भी अपने सामने उसे देखकर हैरान था। मिस अय्यर, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने आपके लिए अपॉइंटमेंट ली थी, आपको वहां होना चाहिए था। उसे देखते ही आर्य नाजाज होकर बोला, सर मैं भी जाना चाहती थी पर अचानक मेरे घर वालों ने मुझे एक लड़के से मिलने के लिए यहाँ भेज दिया। आई एम सो सॉरी, मैं नहीं जा पाई। शिवी ने अपने टोन को भारी किया और जवाब दिया, ये आजकल सबके पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती नहीं कर है, आर्य ने बड़बड़ाकर कहा। फिर उसने शिवी से कहा, अच्छा तो तुम वो लड़की हो जो डैड ने सिलेक्ट की थी। थैंक गॉड तुम आई हो, अब मुझे तुम्हें ना कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मेरे डैड को कैसे जानती हो? उसे वहां देखकर आर्य खुश हो गया, अब उसका काम और भी आसान हो गया था। मैं आपके डैड को कैसे जान सकती हूँ? मुझे मेरी मॉम ने यहाँ भेजा था। अच्छा मैं चलती हूँ, लगता है मैं गलत जगह पर आ गई हूँ। शिवी बहाना बनाकर उठने को हुई, तभी आर्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस वहीं बैठा दिया। तुम गलत जगह पर नहीं आई हो, बिल्कुल सही जगह पर आई हो। मैं ही वो लड़का हूँ जो तुम्हारी मॉम ने सिलेक्ट किया है। देखो मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इसका मतलब आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं, अभी उसे बताना बाकी है, मुझे तुम्हें उस बारे में एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं तुम मेरे ऑफिस में मेरे डैड की जासूस बनकर तो काम नहीं कर रही ना? अगर ऐसा है तो अच्छा नहीं होगा। अचानक आर्य का टोन बदला, वो उसे शक भरी नजरों से देख रहा था।
आर्य के किसी और को पसंद करने की बात सुनकर शिवी भी गुस्सा हो गई। उसने हल्की तेज आवाज में कहा, व्हाट डू यू मीन सर? आपने मुझे ऐसी वैसी लड़की समझा है क्या? और मैं कोई जासूसी नहीं करती हूँ, मुझे आपके पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता होता मेरी मम्मा ने मुझे आपके पास भेजने वाली है तो मैं कभी नहीं आती। ओ रियली, मुझमें क्या कमी है जो तुम नहीं आती? अब तो मुझे पक्का यही लग रहा है कि तुम मेरे डैड की जासूस हो। मैं किसी की कोई जासूस नहीं हूँ। आपको इतना ही मुझ पर शक है तो मुझे जॉब से निकाल दीजिए, आपका शक भी दूर हो जाएगा और मुझे मैं एक ऐसे ऑफिस से छुटकारा मिल जाएगा जहाँ एनी टाइम मुझ पर नजर रखी जाए। शिवी ने गुस्से में जवाब दिया, हाँ मुझे भी तुम्हें वहां रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पहले पता होता कि तुम मिस्टर ओबेरॉय से जुड़ी हुई हो तो मैं तुम्हें काम पर कभी नहीं रखता। ऊपर से तुम्हारी ये अजीबोगरीब बीमारियां, तुम्हें पता भी है ऑफिस में सभी लोग तुम्हारे पीछे से बातें बनाते हैं, यही वजह थी कि मुझे तुम्हारे लिए डर्मेटोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी। आर्य और शिवी वहां आपस में बहस करने लगे। अच्छा हुआ जो मैं मिलने आई आपसे और आपकी सच्चाई मेरे सामने आ गई। अब तो मैं जाकर अपने घर वालों से यही कहूंगी कि मुझे आप जैसे लड़के से कभी कोई रिश्ता नहीं रखना, चाहे फिर मैं जिंदगी भर बिना शादी के क्यों ना रहूं। शिवी बोली, हाँ जैसे मैं तो तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ, मैं तो पहले ही मना करने वाला था और तुम्हें देखने के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं हाँ कहूंगा। आर्य ने पूरे एटीट्यूड के साथ जवाब दिया। आर्य और शिवी की अच्छी खासी बहस हो चुकी थी। शिवी वहां से चली गई, गुस्से में उसने अपना बैग वहीं छोड़ दिया था। लो अब इसे भी मुझे लेकर जाना पड़ेगा, मैंने इसे सीधी साधी समझा था पर ये तो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। ऐसा करता हूँ अभी लौटा देता हूँ। आर्य ने जल्दबाजी में शिवी का बैग उठाया तो वो नीचे गिर गया, उसका सारा सामान बाहर था। हाँ इतना कुछ होने के बाद बस यही होना बाकी रह गया था, आर्य चिढ़कर बोला। वो शिवी का सारा सामान अंदर डाल रहा था तभी उसकी नजर शिवी के आई कार्ड पर पड़ी। उसके आई कार्ड पर शिवी की रियल फोटो लगी थी। उसे देखकर आर्य हैरान रह गया। शिवनंदिनी अय्यर के आई कार्ड पर शिवी वॉटसन की फोटो, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? आर्य ने जल्दी से उठाया और बाहर की तरफ दौड़कर गया। शिवी उसे थोड़ी ही दूरी पर थी। उसने क्रॉस चेक करने के लिए अपना मोबाइल निकाला और शिवी के नए नंबर पर कॉल किया जो सिर्फ उसी के पास था। उसने देखा शिवी के मोबाइल की रिंग बजी और उसने कॉल पिक किया। कहाँ हो तुम? आर्य ने उसके कॉल पिक करते ही पूछा। तुम्हें बताया तो था मॉम ने मेरे लिए लड़का सिलेक्ट किया था, बस उसी से मिलने आई हुई थी, शिवी ने जवाब दिया। ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। आर्य ने आगे कुछ नहीं कहा और कॉल कट कर दिया। उसने अपने हाथ में शिवी का आई कार्ड ले रखा था। शिवी उसे कुछ दूरी पर ही थी और उसे उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। कभी वो शिवी की तरफ देख रहा था तो कभी उसके आई कार्ड की तरफ। जिस लम्हे का आपको बेसब्री से इंतजार था आखिर वो आ ही गया। आर्य के सामने शिवी का सारा सच आ गया। क्या लगता है आपको उसका क्या रिएक्शन होगा? जो भी हो लगता है आप शिवी की अच्छी वाली बैंड बजने वाली है। आपको क्या लगता है आर्य आगे क्या करेगा?